नमस्कार भारत, तारीख 20 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूँ मानसी दास। ट्रंप ने पुतिन के अमेरिकी नागरिकों की जांच के प्रस्ताव को किया खारिज।
This bipartisan comprehensive legislation will do what President Trump has repeatedly failed to do.
मोदी सरकार करेगी अविश्वास प्रस्ताव का सामना, लेकिन कांग्रेस के लिए भी चुनौती कम बड़ी नहीं।
ये देखना होगा कि कांग्रेस कितनी कामयाब होती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल, लेफ्ट पार्टी, उनको अपने साथ ले पाती है।
नहीं रहे हिंदी के मशहूर गीतकार गोपाल दास नीरज।
मैंने मनुष्य प्रेम को, मानव प्रेम को प्रधानता दी, तो मेरी कविता का मूल तत्व है वो मानव प्रेम है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने रूस द्वारा कई अमेरिकी नागरिकों की जांच कराने की बात कही थी। इससे पहले रूस ने अमेरिकी न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को अपने यहाँ के 12 वांटेड व्यक्तियों से पूछताछ की मंजूरी दी थी। पुतिन ने यह प्रस्ताव इसी बदले में रखा था। व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि वो पुतिन के इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, हालांकि बाद में ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक तमाम असहमतियों और विवादों के बावजूद ट्रंप पुतिन को वॉशिंगटन बुलाने की योजना बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए बिना यूरोपीय संघ से बाहर होता है तो इसमें शामिल कई देशों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आईएमएफ ने ब्रेग्जिट मामले पर ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह के करीब दो साल बाद अपने एक विश्लेषण में कहा है कि ब्रिटेन के ईयू से बाहर होने पर आर्थिक विकास दर में 1.5% और रोजगार में 0.7% की गिरावट आ सकती है। आईएमएफ के मुताबिक इसका सबसे बुरा असर आयरलैंड पर पड़ेगा क्योंकि इसके ब्रिटेन से सबसे करीबी रिश्ते हैं। वहीं ब्रिटेन के नए ब्रेग्जिट मंत्री डोमिनिक राब ने यूरोपीय संघ के ब्रेग्जिट प्रमुख मध्यस्थ माइकल बर्नियर से मुलाकात की है। बर्नियर में ब्रसेल्स में राब का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को अभी बहुत से काम निपटाने हैं।
We have a lot of work to do with our teams. There are, you know, 13 weeks left.
हमें अपनी टीमों के साथ मिलकर बहुत काम करना है। हमारे पास सिर्फ 13 हफ्ते बचे हैं। इतने कम वक्त में बहुत सी चीज़ों को अंतिम रूप देना है और हम अभी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। हमें भविष्य में अपने रिश्तों के लिए एक राजनीतिक घोषणा भी तैयार करनी होगी। ब्रेग्जिट के प्रमुख मध्यस्थ माइकल बर्नियर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय आयोग हंगरी को शरणार्थियों के प्रति इसके तल्ख रवैये के लिए यूरोपीय न्याय अदालत ले जा रहा है। आयोग ने हंगरी की सरकार और प्रधानमंत्री विक्टोर ऑर्बान पर शरणार्थियों को हिरासत में लेकर यूरोपीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पिछले महीने हंगरी की संसद ने अपने यहाँ प्रवासियों को आने से रोकने के लिए कई कड़े कानून पारित किए थे। लग्जरी फैशन ब्रांड बर्बरी का कहना है कि इसने पिछले साल न बिक पाने वाले 2 अरब से ज़्यादा कीमत के कपड़े और एक्सेसरीज नष्ट कर दिए। कंपनी के मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ब्रांड की चीज़ें कम दाम में न बिकें और चोरी न हो। बर्बरी का कहना है कि चीज़ों को नष्ट करने की प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल थी, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इस बर्बादी से बेहद गुस्सा हैं। फैशन रिवोल्यूशन नामक अभियान की डायरेक्टर ओर्सोला दे कास्त्रो ने कंपनी के इस कदम की कड़ी आलोचना की है।
The reality is that we as consumers have become very used to ready available.
सच्चाई ये है कि हम उपभोक्ता के तौर पर उन कपड़ों और ब्रांड्स के आदि हो गए हैं जो हमें तुरंत मिल जाते हैं। हमें ये हालात बदलने की ज़रूरत है। मैं खुश हूँ कि कम से कम इस बारे में खुलकर बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोगों के लिए ये समझना अहम है कि जिन कपड़ों पर वो बेशुमार पैसे खर्च करते हैं, ब्रांड की नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं होती। ग्रीन फैशन की समर्थक ओर्सोला दे कास्त्रो के शब्द। पुरातत्व विज्ञानियों का कहना है कि उन्हें 40,000 साल पुराने औजार मिले हैं जो इस बात के सबूत हैं कि नियंडरथल मानव आग जलाने की कला में निपुण थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। हाल में हेलसिंकी में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पुतिन ने अमरीकी अधिकारियों को रूस के 12 वांटेड व्यक्तियों की पूछताछ की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बदले प्रस्ताव रखा कि वो कुछ अमरीकी नागरिकों से पूछताछ करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को अमरीका ने खारिज कर दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सिंधुवासिनी त्रिपाठी से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने रूस द्वारा कई अमरीकी नागरिकों की जांच करने की बात कही थी। इससे पहले रूस ने अमरीकी न्याय मंत्रालय के अधिकारियों को रूस के 12 वांटेड व्यक्तियों से पूछताछ की मंजूरी दी थी। पुतिन ने यह प्रस्ताव इसी पेशकश के बदले में रखा था। व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि वो पुतिन के इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, हालांकि बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। यह पेशकश सोमवार को ट्रंप और पुतिन की हेलसिंकी में हुई शिखर वार्ता के एक अहम मुद्दों में से था, लेकिन रूस जैसी विदेशी ताकत को अमरीकी नागरिकों से पूछताछ के प्रस्ताव से अमरीका में काफी गुस्सा फैल गया था और ट्रंप की कड़ी आलोचना हो रही थी। रूसी अधिकारी जिन लोगों से पूछताछ करना चाहते हैं, उनमें से एक का नाम बिल ब्राउडर है। बिल ब्राउडर व्लादिमीर पुतिन के पूर्व फंड मैनेजर और उनके सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। उन्होंने अमरीकी सरकार के रूस के प्रस्ताव को खारिज करने पर राहत जताई है। बिल ब्राउडर ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि वो ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। यह एक ऐसा फैसला है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिनों तक इंतजार करने के बजाय महज कुछ सेकंडों में ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनका मुझे पुतिन को सौंपकर रूसी जहर से मेरी जान लेने का कोई इरादा नहीं है। यह निश्चित रूप से अहमियत रखता है। पुतिन के पूर्व फंड मैनेजर बिल ब्राउडर के शब्द। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक विधेयक पेश किया है, जिसमें रूस को उसके शत्रुतापूर्ण कार्यों का जिम्मेदार ठहराने की बात कही गई है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि स्टेनी होयर ने कहा, आज मैंने और मेरे साथियों ने एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है सिक्योर अमेरिका फ्रॉम रशियन इंटरफेरेंस एक्ट। यह विधेयक वो करेगा जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप बार बार नाकाम हुए हैं। यह रूस को उसके विद्वेषपूर्ण कदमों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा, हमारी चुनावी सुरक्षा को मजबूत करेगा और हमारे सहयोगी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि स्टेनी होयर के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही अपनी इस मुलाकात के सफल होने का दावा किया है, हालांकि दोनों नेताओं की बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और आगे क्या होगा इस बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधुवासिनी त्रिपाठी। अब इसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने इस साल पुतिन को अमेरिका आने का न्योता दिया है और मुलाकात के सिलसिले में बातचीत चल रही है। इधर ट्रंप ने कहा है कि हाल में रूस के साथ हुई उनकी बातचीत सफल रही और वो एक और मुलाकात के लिए तैयार हैं। हालांकि अमरीका में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हेलसिंकी में हुई बैठक में क्या बातें हुई, इसे लेकर चर्चा गर्म है और डेमोक्रेट नेता चक शूमर का कहना है कि जब तक हेलसिंकी में हुई वार्ता के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, आगे की मुलाकात पर विचार करना नहीं चाहिए। फिलहाल अमरीका के न्योते की खबर पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कौन सा मोड़ लेंगे, इस पर सभी की और बीबीसी की भी नजर रहेगी। रुख करते हैं भारत का। आज देश की संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सरकार उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को तैयार हो गई है जो मार्च में खारिज हो गया था। ये मोदी सरकार का शक्ति परीक्षण है या फिर एकजुट विपक्ष का? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामासेशन से संपर्क साधा और उनसे यही सवाल किया।
देखिए, लोकसभा में मोदी सरकार की अभी भी उपचुनाव हारने के बावजूद उनके पास मेजोरिटी है, उनके संग कुछ अलायंस भी हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई खतरा है। संख्या बल उनकी ठीक ठाक है और वो प्रूव कर पाएंगे। बल्कि उनका ये भी दावा है कि और अन्य पार्टीज भी उनके साथ हैं, और आज अन्ना डीएमके ने तो ऐलान कर दिया कि वो सरकार के साथ है। थोड़ा बहुत दुविधा था, अटकलें लगी थी शिवसेना के ऊपर कि वो रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी आज साफ कर दिया ये मोशन के विरोध में वोट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये टेस्ट है सरकार के लिए, और बड़ी टेस्ट है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा ही हो गया है और ये पहली दफा कॉन्फिडेंस वोट फेस कर रहे हैं मोदी जी। तो जो तमाम जो मुद्दे हैं, और सारे मुद्दे सरकार के पक्ष में नहीं है, इनफैक्ट विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएंगे वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ ही जाएगी।
जी, संख्या बल भले ही सरकार के पास है लेकिन माहौल संसद में उसके खिलाफ हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष जो है वे वजह संसद का समय खराब करना चाहता है, और इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि सरकार के जो काम है उनको अटकाया जा सके। इस आलोचना में कितना दम है?
नहीं, इस आलोचना में बिल्कुल दम नहीं है। पिछले संसद की सत्र देखेंगे तो कुछ भी बिजनेस हुआ नहीं। पार्लियामेंट आखिरकार किस लिए बुलाते हैं? पार्लियामेंट के जो सत्र हैं वो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, और जबकि पार्लियामेंट इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तरह से अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये ले लिया है, एक दिन का समय दिया है, रात तक शायद खत्म हो जाएगा, और सोमवार मंडे से जो बिजनेस है रेगुलर बिजनेस वो ले सकती है।
बस आखिरी सवाल, जो आज अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ये विपक्ष की एकजुटता प्रदर्शन करने का कितना बड़ा मौका हो सकता है?
जी, मैं काफी लंबे समय बैठी हूँ पार्लियामेंट में, और अगर विपक्ष की एकजुटता की बात होती है तो इसका लीड रोल किसको लेना चाहिए? वो कांग्रेस को लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के खेमे में मुझे ऐसे कोई नजर नहीं आ रहा जो एक्टिव फ्लोर कोऑर्डिनेशन कर रहा है। वो अपने ये इसी पे उलझी हुई है कि उनके तरफ से कौन बोलेगा। हाँ, राहुल जी तो जरूर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मुद्दे फ्लैग करना है, इसी पे उनका ध्यान रखना ज्यादा है। टीडीपी जरूर एक लीड रोल ले रही है क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी का ही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल, लेफ्ट पार्टी, उनको अपने साथ ले पाती है या एक लोन सोल्जर की तरह फंक्शन करती है कांग्रेस, और कांग्रेस को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
राजस्थान के कोटा में इसी सप्ताह मंगलवार को दुधारू गायें लेकर जा रहे प्रवीण तिवारी और उनके ड्राइवर अहमद अली पर हिंसक भीड़ ने हमला किया। भीड़ को शक था कि गायों की तस्करी की जा रही है, हालांकि प्रवीण का कहना था कि वो अपनी डेयरी फार्म के लिए गायें ले जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। इस पर और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने प्रवीण तिवारी से बात की।
सर, हम जयपुर से पशु लेके जा रहे थे, गाय, दुधारू जानवर है हमारे पास। एक गाय की कीमत 60 से 65 हजार रुपए है। 7 गाय लोड कर रखी थी जिनके साथ बछड़े हैं। एक गाय प्रेग्नेंट थी जो 1 या 2 दिन में जन्मने वाली है। हमने टोल देके हम जैसे ही निकले आगे एक टोल आया, फिर इनने वहीं पे हमें बैनर वनर लगा के रोक लिया। हम रुके, रोक के ना यहाँ हाथापाई करने लग गए। हमसे ड्राइवर से कागज मांगे, गाड़ी के चाबी ले ली, कागज ले लिए, मोबाइल छीन लिए हमारे। इसके बाद बहुत बुरी तरीके से मारा हमें, बड़ी बेरहमी से मारा। कई जगह फ्रैक्चर है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ड्राइवर की हालत खराब है।
प्रवीण जी, जब आपने उन्हें बताया कि मैं प्रवीण तिवारी हूँ, पंडित हूँ, दूध की गाय ले जा रहा हूँ, क्या उसका हमलावरों पर कोई असर हुआ?
नहीं, कोई असर नहीं हुआ उन लोगों। मैंने बोला मैं जिला प्रमुख का भाई हूँ तो भी उन लोगों का कुछ असर नहीं हुआ। अगर परमिशन मिली हुई है इसको वहाँ तक ले जाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी, मार मार के बेहाल कर दिया। मेरे ड्राइवर से पैसे छीन लिए, जिसके बाद किसी राहगीरी ने पुलिस कर्मी को फोन लगा के पुलिस बुलाई, तब जाके हम लोग बच पाए, नहीं तो हमारा किस्सा वही खत्म हो जाता, जान से मार डालते हम लोगों को। मैं इनको देख रहा था, ये मुझे देख रहे थे, भगवान हुए मालिक था, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, सोचेंगे क्या, सोची खत्म हो गई।
प्रवीण तिवारी से बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों ने आज किन खबरों को अपने पहले पन्ने पर सुर्खियां बनाकर छापा है। सिंधु वासिनी त्रिपाठी अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं, जानते हैं उनसे क्या है आज की बड़ी सुर्खियां।
जी मानसी, आज लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रही है, और ज़्यादातर अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा है। वोटिंग शाम के तकरीबन 6 बजे होगी, तो आज संसद में काफ़ी दिलचस्प माहौल होगा। देखना होगा कि विपक्षी पार्टियां कौन से मुद्दे उठाती हैं और सरकार उनका क्या जवाब देती है। तो अलग अलग हेडलाइन से है ये खबर अखबारों में। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है कि विश्वास करिए 2019 की फिल्म यहीं साफ हो जाएगी। इसके अलावा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 खालिस्तानी चरमपंथी दिल्ली में संसद भवन पर हमले की योजना बना रहे हैं, और अखबार ने ये बात एक खुफिया इनपुट के हवाले से कही है। और बताया जा रहा है कि 2016 में पंजाब में जो नाभा जेल ब्रेक हुआ था, ये चरमपंथी उससे जुड़े हुए हैं। और अखबार ये भी लिखता है कि जानकारी मिलने के बाद सेंट्रल और नई दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी है कि अगर वो फेक न्यूज़ पर लगाम नहीं लगा पाया तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आईटी मिनिस्ट्री ने यह चेतावनी जारी की है। और पिछले कई दिनों में, कई महीनों में व्हाट्सएप के जरिए फर्जी खबरें फैलने से मॉब लिंचिंग और भीड़ के हाथों हत्या की कई घटनाएं आई थी। इसके बाद व्हाट्सएप ने कई अखबारों में विज्ञापन छाप के बताया भी था कि आप फेक न्यूज़ से कैसे बचें। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक और रिपोर्ट है कि केंद्र और न्यायपालिका एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की कोलेजियम सिफारिश को खारिज कर दिया है। इसके पहले भी ऐसा हुआ था जब केंद्र ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश को खारिज कर दिया था। तो तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। दैनिक जागरण में एक बड़ी दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह पीएम मोदी की रैलियों में चोरी करते थे।
रैलियों में आने वाले जो लोग थे उनकी चोरी,
पर्स और मोबाइल, ऐसी चीजें। तो उन्होंने बताया कि ये रैलियों का पता या ऐसे बड़े कार्यक्रमों का पता अखबार से लगाते थे और बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग करते थे वहां जाने के लिए। महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते थे, लोगों को शक नहीं होता था। और अभी जो नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था, वहां भी इन्होंने चोरी की थी।
जिसका मतलब अब रैलियों में जाएं तो थोड़ा बच कर जाएं। धन्यवाद सिंधु वासिनी त्रिपाठी। हिंदी के सम्मानित साहित्यकार, कवि, लेखक और गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज का बीते कल देर शाम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वो 93 साल के थे। दशकों तक कवि सम्मेलनों में जान फूंकने वाले और हिंदी फिल्मों के सैकड़ों लोकप्रिय गीतों की रचना करने वाले नीरज को पद्मभूषण, पद्मश्री और यश भारती जैसे तमाम सम्मानों से नवाजा गया था। नीरज के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं समीरात्मज मिश्र।
स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े।
हिंदी फिल्म जगत को ऐसे न जाने कितने बेहतरीन नगमे देने वाले हर दिल अजीज कवि और शख्सियत गोपाल दास नीरज ने 19 जुलाई की शाम को दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जन्मे नीरज का बचपन और यौवन भले ही आर्थिक तंगी में गुजरा, लेकिन उनकी प्रतिभा के निखार में ये तंगी कभी अड़चन नहीं बनने पाई। चाहे सिनेमा घर की दुकान में नौकरी करनी पड़ी हो या फिर कचहरी में टाइपिस्ट का काम, लेकिन हाईस्कूल से लेकर एमए तक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में ही पास की। कानपुर में उनके साथी रहे वरिष्ठ कवि और पत्रकार सुरेश सलिल याद करते हैं।
10वीं तक पढ़ाई करने के बाद बच्चन जी की कुछ कविताएं पढ़कर वो कविता की ओर आकर्षित हुए, कविताएं लिखनी शुरू की। 2 संग्रह उनके ऐसे आए जिनको सीधा असर बच्चन जी की कविताओं का सीधा। सुएज कैनाल जब क्राइसिस पैदा हुई तो उन्होंने एक लंबी पोयम लिखी, नील की बेटी के नाम खत, वो बहुत पॉपुलर हुई थी। मंच पर जितनी पॉपुलर रही थी उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव पोएट्री में बड़ी पॉपुलर हुई थी अपने समय में। इसी तरह से उनकी एक, जब थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा पैदा हुआ, उन्होंने एक कविता लिखी थी।
मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर जमीन पर उगा खून इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई।
कई दशक तक कवि सम्मेलनों और मुशायरों की एक खास पहचान बन चुके नीरज ने हिंदी फिल्म जगत को भी अपने बेहतरीन गीतों के जरिए एहसान से लाद दिया। उनका फिल्मी जीवन आकार में जितना कम था, प्रभाव में उससे कई गुना ज्यादा था। उनके लिखे सैकड़ों गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं।
तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तू सितारे।
कवि सम्मेलनों में नीरज की उपस्थिति ही एक अलग प्रभाव पैदा करती थी, लेकिन जब वो नशीली श्रृंगारी कविताओं को अपनी लरजती आवाज में पढ़ते थे तो ये कविताएं श्रोताओं को दीवाना बना देती थीं।
बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जान देता।
श्रृंगार और रोमांटिक गीतों के अलावा नीरज के गीतों में दार्शनिक और मानवतावादी दृष्टिकोण का भी जबरदस्त विलयन मिलता है। कई कवि सम्मेलनों में उनके साथ कविता पाठ करने वाले मशहूर कवि अशोक चक्रधर कहते हैं,
जिस गांव में उनका जन्म हुआ उसका नाम था एक दिल। वो कवि सम्मेलन के एक दिल थे, आदमी से आदमी को जोड़ने वाले धर्म के प्रवक्ता थे वो। एक त्रयी हुआ करती थी, काका हतरसी, बाल कवि बैरागी और नीरज। तो बैरागी भी अभी चले गए, नीरज भी चले गए, तो ऐसा लग रहा जैसे कि हम पेड़ काट दिए गए हैं सीमेंट का जंगल उगाने के लिए।
नीरज की गिनती ऐसे कुछ ही कवियों में होती है जिन्होंने न सिर्फ मंचीय कविता को एक व्यापक आयाम दिया, हिंदी गीतों को फिल्मी जगत में लोकप्रिय बनाया, बल्कि साहित्य जगत में भी पूरा सम्मान हासिल किया।
बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें।
पद्मश्री, पद्मभूषण और यश भारती जैसे सम्मान से विभूषित नीरज ने उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष जैसे पद को भी सुशोभित किया। नीरज का एक बेहद लोकप्रिय गीत है, इसीलिए तो गली गली बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार न था। इसी गीत की अंतिम पंक्ति है, नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था। वास्तव में यह आत्मस्वीकृति अकारण नहीं है। नीरज के निधन से हिंदी साहित्य में प्यार भरे गीतों की परंपरा खत्म हो गई, इस कथन में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन प्यार भरे गीतों का एक अध्याय समाप्त हो गया, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आज से कई साल पहले गोपाल दास नीरज ने BBC को दिए एक साक्षात्कार में अपने जीवन के सफर के बारे में कई रोचक बातें बताई थी। आपको इस साक्षात्कार का कुछ हिस्सा सुनाते हैं। उनसे बात की थी पूर्व BBC संवाददाता भारतेंदु बिमल ने।
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने 1941 से लिखना आरंभ किया था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, और तब से बराबर आज तक लिखता रहा हूं। इस दौरान में, इस लगभग 56-57 वर्ष के दौरान में तरह तरह के आंदोलन साहित्य में आई। कभी एक समय था जबकि इस देश में बच्चन जैसे लोगों का, बच्चन जी दिनकर थे, गोपाल सिंह नेपाली थे, बलबीर सिंह रंग थे, ये लोग थे, इन लोगों का पूरे समाज पर प्रभाव था। फिर धीरे धीरे करके दूसरे आंदोलन चले तो एक प्रकार से गीतकार को पीछे ढकेल दिया गया और नई कविता आ गई, है ना। हमारे साथ क्या रहा कि हमने तो गीतकार के रूप में ही जन्म लिया था। मैंने कोशिश ये की थी कि एक ऐसी भाषा का निर्माण करूं, ऐसी भाषा को जन्म दूं जो कि प्रेम की भाषा बन जाए, जो न हिंदी रहे न उर्दू रहे। यही मैंने किया सी कहा था, अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लला समझे जी, या इसे ब्रज की लली समझे। हिंदी नहीं ये, उर्दू नहीं ये, है ये पिया की कसम, इसकी स्याही आँखों का पानी, दर्द की इसकी कलम, लागे किसी को मिश्री से मीठी, को ही नमक की डली समझे। ये तो मेरा शिल्प का बात कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट के रूप में, कविता की आत्मा के रूप में मैंने क्या माना, कविता की आत्मा के रूप में, कविता की वस्तु के रूप में मैंने मनुष्य प्रेम को, मानव प्रेम को प्रधानता दी। तो मेरी कविता का सूत्र वाक्य जो है, मूल तत्व है, वो मानव प्रेम है। इसीलिए मैंने कहा था, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
आपकी कविताएं, आपके गीत, आपके विचार पुस्तकों के जरिए आपकी अपनी ज़ुबान से लोगों तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, लोगों के दिलों को उन्होंने छुआ, लेकिन एक दूसरा भी माध्यम रहा और वो माध्यम है फिल्मों का। तो ये बताइए कि फिल्मों में आपका प्रवेश कैसे और कब हुआ?
8 फरवरी 1960 को बम्बई में एक नीरज गीत गुंजन समारोह हुआ था, उसमें मेरा अकेला काव्य पाठ था, एकल काव्य पाठ। तो फिर मेरे पास दूसरे दिन हमारे एक आर चंद्रा से प्रोड्यूसर जिन्होंने बरसात की रात बनाई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई नीरज जी हम चाहते हैं कि आप नई उम्र की नई फसल जो मेरी पिक्चर है उसके गीत आप लिखें। तो मैंने उनसे कहा भाई गीत लिखना तो बम्बई नहीं आ सकता नौकरी छोड़ करके, हाँ आप मेरी कविताओं में से अगर कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस बात पर हम राज़ी हो गए थे और वो नई उम्र की नई फसल मेरी कविता उन्होंने गीत के रूप में लिखी। तो कारवां गुजर गया, उस समय बहुत अपने समय का लोकप्रिय गीत हो गया था, उस जितनी समय उन्होंने ली थी वो सब मेरी कविता थी, तो एकदम सब उसके गीत हिट हुए। अब इसके बाद मित्र तो देव साहब एक बार मुझे कभी मिले थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि नीरज वी विल वर्क टुगेदर समडे। तो जब प्रेम पुजारी अनाउंस हुई सो आई कैजुअली रोट ए लेटर टू देव साहब, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब मुझे 7 दिन बाद मिल गया। उन्होंने कहा यस कम ऑन नीरज कम ऑन, मैं गया प्रेम पुजारी में मैंने गीत लिखे। तो इस प्रकार से वो सही रूप से जो प्रवेश मेरा हुआ वो हुआ देव साहब के कारण, और मैं आज भी उनका इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी समय मुझे राज कपूर से भेंट हुई, राज कपूर की मेरे नाम जोकर के लिए मैंने गीत लिखा था, वो तो बहुत ही सुपर हिट हुआ था, ये भाई ज़रा देख के चलो। तो कहने का मतलब सही रूप से प्रवेश मेरा जो है वो 65 से देव साहब के कारण हुआ है।
घड़ी में इस वक्त बज गए हैं 6:56 और कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। अब सुनते हैं खेल समाचार ज्योतिका सिंह से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो चुके भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा की टीम में वापसी कंधे की नई चोट के कारण और टल गई है। साहा को ये चोट राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA में लगी। साहा पहले ही अंगूठे की चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे और NCA में अपनी उसी चोट से बाहर आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें ये नई चोट लगी। उनके स्थान पर पहले 3 टेस्ट मैचों के लिए दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को टीम में जगह मिली है। साहा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में खेला था, और देखा जाए तो ICC टेस्ट रैंकिंग्स में सबसे आगे भारत है और 5वें स्थान पर इंग्लैंड। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कोच मदन लाल से, और मैंने जाना कि क्या रैंकिंग्स अलग होने से टेस्ट मैच में कोई फर्क पड़ेगा।
नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो रैंक नंबर 5 की टीम है इंग्लैंड की, वो तो ज्यादा कोशिश करेगी कि हमने अपना रैंक बढ़ाना है तो हम ज्यादा अच्छा खेलें। अब प्रेशर तो ज्यादा रहता है जिसकी रैंकिंग नंबर 1 पे रहती है, पर रैंकिंग डजंट मीन एनीथिंग। पर ये है कि उनको थोड़ा सा इंडिया को एडवांटेज जरूर है कि हमारी टीम अच्छी है। आप डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ये भी है वनडे में भी अच्छी थी, नहीं हम जीत पाए, ये थोड़ा सा ये रहता है कि इतनी अच्छी टीम है क्यों नहीं जीत पाई, ये थोड़ा सा ये जो चीजें हैं सब जो है प्रेशर लेकर आती हैं। तो आप देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में कैसे हमारे खिलाड़ी जो है परफॉर्म करते हैं।
खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले समाचार सुनते हैं सिंधुवासिनी त्रिपाठी से।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने रूस द्वारा कई अमरीकी नागरिकों की जांच कराने की बात कही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए बिना यूरोपीय संघ से बाहर होता है तो इसमें शामिल कई देशों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यूरोपीय आयोग हंगरी को शरणार्थियों के प्रति इसके तल्ख रवैये के लिए यूरोपीय न्याय अदालत ले जा रहा है। आयोग ने हंगरी की सरकार और प्रधानमंत्री विक्टोर ऑर्बन पर शरणार्थियों को हिरासत में लेकर यूरोपीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लग्जरी फैशन ब्रांड बर्बरी का कहना है कि इसने पिछले साल न बिक पाने वाले 2 अरब से ज्यादा के कपड़े और एक्सेसरीज नष्ट कर दिए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया अजीत सारथी ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम को कार्यक्रम दिन भर में, तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।